देखिए रखो नंबर 4 आयत नंबर 80 से, फलम मस्त यसु मिनहु खलसु नजिया। जब ये इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। इनमें जो सबसे बड़ा था इसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता कौल इकरार लिया था और इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से ना टलूंगा जब तक के वालिद साहब खुद मुझे इजाजत न दें, या अल्लाह ताला मेरे इस मामले का फैसला कर दे, वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी, आपके साहबजादे ने चोरी की और हमने वही गवाही दी जो हम जानते थे। हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले न थे। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमाएं जहां हम थे और इस काफले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं, यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा, बल्कि तुमने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। फसबरुन जमील, पर सब सबर ही बेहतर है। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीया, करीब है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास ही पहुंचा दे। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, वही है इल्म और हिकमत वाला। वतवल्ला अन्हुम वकाल या असफा अला यूसुफ, फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। इनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफेद हो चुकी थीं और वो गम को दबाए हुए थे। बेटों ने कहा, वल्लाह आप हमेशा यूसुफ की याद ही में रहेंगे यहां तक कि घुल जाएं या खत्म हो जाएं। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ की और इसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। यकीनन रब की रहमत से ना उम्मीद वही होते हैं जो काफिर हैं। फलम्मा दखलू अलै क़ालू या अय्युहल अजीज, फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहने लगे, ए अजीज, हमको और हमारे ख़ानदान को दुख पहुंचा है। हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गल्ले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए। खैरात मांग रहे हैं आज भाई से। अल्लाह खैरात करने वालों को पसंद करता है। यूसुफ ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया? अब यूसुफ पर्दा खोलते हैं अपना। उन्होंने कहा, कालू अन्नक अंत यूसुफ, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? जवाब दिया, अना यूसुफ व हाजा अखी, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। कदमन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तकी व यस्फिर व इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुख्सिनीन, अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया है और बात यही है कि जो परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह किसी नेकोकार का अजर ज़ाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बर्तरी दी है और ये बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين, जवाब दिया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। इज़हबू बिकमीसी हाज़ा, मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ, इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगें और आ जाएं और अपने तमाम ख़ानदान को मेरे पास ले आओ। ये था रुकू नंबर 4, इसका उन्वान क्या है? हज़रत यूसुफ की हकीकत खुलती है। इसमें आपने देखा कि तीसरी बार अब भाई, यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें बिन्यामीन को नहीं जाने दूंगा, तो उनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा कि मैं भी नहीं जाता, तुम ऐसा करो, तुम बाकी 9 भाई चले जाओ, मैं इधर ही रहूंगा क्योंकि मैं तो बाप के सामना नहीं कर सकता। और दूसरी ये बात है कि मेरे इधर रहने से फिर बाप को ये भी तसल्ली हो जाएगी कि हमने कोई ज्यादती नहीं की, तो लिहाजा मैं इधर हूँ। अब ये हुआ कि बाकी 9 भाई गए और उन्होंने जाके बाप को फिर खबर दी कि इस तरह तेरे बेटे ने चोरी की, हमने तो वही गवाही दी जो हम दे सकते थे, लेकिन यह है कि उन्होंने उसको रोक लिया। अब यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम का जो दिल देखिए कि जब उस पर एक नई चोट पड़ी, एक नया गम, तो पुराना गम हरा हो गया। ये नहीं कहा कि या असफा आला बिनजमीन, क्योंकि अब तो बिनजमीन का गम मिला था, क्या कहते हैं या असफा आला यूसुफ, उनको पुराना गम याद है। और ऐसे ही होता है जब इंसानों की जिंदगी में कोई गम आते हैं ना, तो पिछले गम हरे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं मरग होती है, कोई फौतीदगी के घर में बैठते हैं, तो लोग पिछले सारे मरे हुए लोगों को याद करने लगते हैं, फलां का भी इंतकाल हुआ था, फलां भी हुआ था, ऐसे भी हुआ था। इसी तरह अगर किसी की कोई चोरी हो जाए तो लोग पिछली चोरियों के किस्से सुनाने लगते हैं। तो ये एक बाप की बहुत ही ज़्यादा बड़ी आजमाइश थी। और इस वक्त तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें जा चुकी थी, नबीना हो चुके थे रोते हुए। अब ऊपर से दूसरे बेटे का गम मिला तो कहने लगे कि मुझे गम है लेकिन मैं सब्र करूँगा, फसब्रुन जमील। यानी इस रुकू में अगर आप देखें तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक आइडियल बाप की सूरत में दिखते हैं। बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों के बावजूद उनके लिए कोई बददुआ नहीं, कोई बुरा कलमा नहीं बोला, बल्कि कहा कि ठीक है मैं सब्र करूंगा। कौन है, किसके अंदर इतना सर्फ है, किसके अंदर इतना हौसला है? हमारे यहाँ तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीट दे तो माँ उस पहले बच्चे को मारने लगती है कि तुम्हें जरूरत क्या हुई, तुमने इसको क्यों मारा। और ख़ास तौर पे अगर घर के किसी लाडले बच्चे को, यानी भाई बेटा है मिसाल है, बहनें अगर उसको मार दें तो माँ को कितना गुस्सा आने लगता है कि तुमने भाई को क्यों मारा। लेकिन यहाँ तो आप देखिए कि कत्ल तक की बात हो गई, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल भी इस पे कोई बुरा रिएक्शन नहीं किया, बल्कि क्या कहा, बल सवलत लकुम अनफुसकुम अमरा, बस तुमने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। यानी उनको असल हकीकत नहीं मालूम थी और उन्होंने कहा कि जैसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने किया, अब इस तरह ये अब भी मेरे साथ यही कर रहे हैं, लेकिन फसब्रुन जमील। इस पूरे रुकू में हमारे सीखने की जो बातें हैं उसको अगर हम साथ साथ देख लें तो पहली बात क्या है कि बहुत सारे बुरों में कोई कम बुरा भी हो सकता है। ये वो भाई है जिसने कहते हैं कि पहले भी मशवरा दिया था कि यूसुफ को कत्ल ना करो, तो इसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और जब तक के यानी मेरा ये मामला ना हो जाए। दूसरी चीज़ हमने इसमें ये सीखी कि इंसान को एक गम दो बार भी मिल सकता है। हमारे यहाँ अमूमन इस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि ये एक बार ऐसा हुआ तो दोबारा क्यों हुआ। हो सकता है कुछ मौत के गमों को तो हम बर्दाश्त कर ही लें अल्लाह की देन समझ के, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मिसाल है कि अगर एक बच्ची है, उसकी शादी हुई, घर नहीं बसा, तलाक हो गई, लोग फिर भी उंगलियां उसी पे उठाते हैं, किसी का कोई कसूर होगा, हो सकता है कि वो मुकम्मल बेगुनाह भी हो। फिर अगर दोबारा उसका घर बसे, किसी वजह से वहाँ भी उसका घर ना बसे, तो लोग अमूमन क्या सोचते हैं, इसी में कोई ख़राबी होगी और इसी का कोई कसूर होगा। अब यहाँ देखिए कि हज़रत याकूब को दो दफ़ा गम पहुँच रहा है कि हज़रत याकूब का कसूर है, उन्होंने तो कोशिश की, उन्होंने वादा भी लिया, तो लिहाजा इंसान को जाहिर पे इस तरह ज़ाहरी राय नहीं रखनी चाहिए। अमूमन मैं इसलिए इस बात को बीच में लाई कि हम बहुत बेलगाम होकर लोगों पर तबसरे करते हैं। यानी बाज़ दफ़ा देखा गया कि लोग दूसरों के मामलात और उनके हालात को ना जानते हुए सिर्फ उन पर अपने कमेंट्स देने लगते हैं, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं। तीसरी चीज़ हमने जो इसमें सीखी वो क्या थी कि सब्र जमील। सब्र जमील क्या होता है, इसकी तारीफ हदीसों में आती है। सब्र जमील क्या है, ला शिक व तफीहा, ऐसा सब्र जिसमें शिकवा ना हो, इजहार भी नहीं करना, कहना भी कुछ नहीं, बस दिल पे पी जाना। ये ना कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या मैं ही रह गई थी और मेरे ही साथ ये सब कुछ होना था, सारी दुनिया के गम जो हैं वो मेरे ही नसीब में नहीं। सब्र जमील क्या होता है कि इंसान अपने जाहिर से अपने दिल का राज, उसका हालत, उसका गम भी ना खुले, इतना इत्मीनान हो चेहरे पे, इतना सुकून हो, इतनी खुशी हो कि लोग तसव्वुर में भी ना करें कि ये बंदा इस वक्त किसी कर्ब से गुजर रहा है। और याद रखिए, जिनको ये सब्र करना आ जाता है ना, फिर वो वाकई जीत जाते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मुश्किलात को, अपने बुरे दिनों को खूबसूरत बना लेते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो छोटी छोटी बातों पे आके आहुजारियां करने लगे, लोगों की हमदर्दियां लेने लगे। मेरे साथ ये हुआ, मैंने अमूमन देखा लोग बैठते हैं ना, हर उम्र के लोगों के मुख्तलिफ गम होते हैं। बच्चे बैठते हैं तो वो अपने खिलौनों के गम एक दूसरे के साथ करते हैं, ये हो गया, ये टूट गया, ऐसा हो गया। स्कूल के बच्चे यानी स्कूल गोइंग बच्चे बैठते हैं तो उनके गम क्या होते हैं, होमवर्क बहुत है, फलां ऐसा है, टू मच, बहुत लंबा, दिस एंड दैट, स्कूल को डिस्कस करते हैं। जवानी आती है तो कोई और ही गम लग जाते हैं दिल को, वो बैठ के अपने गम रोने लगते हैं, फलां अच्छा लगा, फलां बुरा लगा। जरा और पुख्तगी आती है तो किसी एक को पसंद कर लिया जाता है, फिर जहां बैठे उसी के गम, उसी के रोने। फिर उसके बाद शादी हो जाती है तो शादी के बाद महके में आए तो ससुराल की बातें, उसने ये किया, सास ऐसा करती है, नंदे ये करती हैं, और फिर ऊपर से खूब बैठ के बातें बनाई जाती हैं उनकी। फिर उसके बाद आप देखिए कि इंसान जरा थोड़ा मेच्योर होता है, जरा थोड़ी शौहर के साथ, तो फिर हर वक्त शौहर के शिकवे शुरू रहते हैं। फिर जरा जवान होते हैं तो औलाद के मसले शुरू हो जाते हैं, और जब बूढ़े होते हैं तो मैंने देखा है जब 40, 50, 60 साल से ऊपर के लोग बैठते हैं, घुटनों में दर्द है, कलाई में दर्द है, सर में रहता है, अब तो झुका भी नहीं जाता। आदत होती है लोगों की। कभी अपने मैंने जो बातें कही, क्या आपको इसमें से किसी पे ऐसा है कि इत्तफाक नहीं? पूरी यही है ना, क्या है हम? मुझे लगता है हम शिकायत नामा है। क्या अल्लाह के फैसलों पे शिकवे करेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि अगर जिंदगी में कोई गम आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गमों से महफूज रखा है, आगे भी रखे, लेकिन कभी जिंदगी में कोई छोटा सा भी गम आए ना, कोई ऐसी जिसको आप कहें, तो मैं सोचती हूँ मैं किसी से इसका जिक्र करूं? ये तो ऐसे है जैसे मैं अपने अल्लाह ताला की शिकायत करूंगी, किसी दूसरे से शिकायतें लगाऊंगी। मेरे रब ने, अल्लाह ने मेरे लिए ये चीज चुनी तो मैं दूसरों को बताऊं, कितनी बुरी बात है। यानी न शुक्री की बात नहीं लगती कि मैं अल्लाह की शिकायत लगाऊं, मैं उसके शिकवे करूं। इसलिए जिंदगी में जितना आप अपने अंदर जब्त पैदा करेंगे, बाज लोग होते हैं पहाड़ उनके सर से गुजर जाते हैं ना तो उनके चेहरे पर इत्मीनान होता है, मुतमईन बैठे हुए, अच्छा ठीक है, हो गया, ओके ठीक है, आगे क्या। और बाज लोग छोटी सी चीज पर उनकी चीखे निकल जाते हैं। मेहमान को आने को लोग गम बना लेते हैं, इतने मेहमान आ गए, इतना बर्तन धोए, इतना काम। यानी आप गौर करके देखें, एक ही जिंदगी होती है लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके से लोग बसर करते हैं। वाकई अगर किसी इंसान ने अपने आप को किसी आला मुकाम पर लेके जाना है तो अपनी आदत बनाएंगे कि हमने गम नहीं करना और हमने सब्र जमील करना है। मैंने अपने रब की शिकायतें लोगों से नहीं लगानी। बस आपका शोहर आपके साथ कोई गलत बात करे, हो जाती है जिंदगी में, अब उसको पता चल जाए कि आप हर जगह बैठ के उसकी बुराइयां कर रहे हैं, क्या महसूस करेगा? क्या उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत आएगी या और बुगस बढ़ेगा? बुरा बनेगा ना। सास को पता चले कि बहू जहां बैठती है मेरी बुराई करती है, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। माँ को पता चले मेरे बच्चे मेरी बुराई करते हैं कहीं, बुरा लगेगा ना। तो आप सोचिए कि अल्लाह को तो वैसे ही पता है, जब हम कुछ उसके बारे में कहते होंगे तो उसका कैसा लगता होगा। दुनिया वालों की तो हम करते होंगे तो हो सकता है ना पता चलता हो, लेकिन बहरहाल हमें अपने अंदर सब्र पैदा करना है। एक और चीज जो बहुत ही खूबसूरत हमने इसमें से सीखी वो क्या है कि मोमिन पुर उम्मीद रहता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ये बात, असल्लाहु अय्यातियनी बिहिम जमीया, उम्मीद है कि अल्लाह इन सब को अब इकट्ठा लाएगा। ये नहीं कहा कि एक गम क्यों मिला और मिला, कह रहे नहीं देखना अभी फिर लाएगा। कितने साल हो गए, तकरीबन 40 साल के करीब वक्त गुजर गए और यूसुफ जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद रखी है। ये है एक बंदा मोमिन का एक खूबसूरत किरदार कि मुश्किल से मुश्किल हालात में उम्मीद नहीं छोड़ता। एक रिवायत जो मैंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका मफहूम क्या है कि गमो यानी इंतजारुल फर्ज खैरुल इबादा, कुछ इस तरह के लफ्ज हैं उसमें, कि गम के दूर होने का इंतजार करना यानी उसके लिए ऊपर उम्मीद रहना, ऐसा शख्स जो है ये इबादत की हालत में है। मसलन आप देखिए कि एक शख्स बीमार है, आप उसको पूछते हैं क्या हाल है, वो कहते ठीक, बस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बस अब मैं ठीक हो रहा हूँ। बाज लोगों को आपने देखा है मुश्किल से मुश्किल हालात में फंसते हैं ना, लेकिन उनके रवैये में, उनके बात करने के अंदाज में कभी मायूसी नहीं झलकती। नहीं इंशाल्लाह मैं ठीक होने वाली हूँ, नहीं इंशाल्लाह अब ये काम हो जाएगा, اچھا یہ نہیں ہے، ہاں نہیں انشاءاللہ جلد مل جائے گا، جاب نہیں ہے، نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. یعنی کچھ لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اچھے اچھے رنگ میں لیتے ہیں کہ نہیں دیکھنا میرے حالات سنور جائیں گے. یہ شخص بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک ایمان کی یہ علامت ہے. مایوس نہیں ہونا. اس کے برعکس کافر جو ہوتے ہیں، نہ شکرے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ہر وقت مایوسیوں کی باتیں کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ہم نے اس میں سیکھی کہ اپنے غموں اور اپنی پریشانیوں کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرنا. ہائی لائٹ کر سکیں تو بہت ہی پیاری دعا ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرا شکوہ اور میرا غم، میری فریاد اللہ کی طرف ہے. انسان کمزور ہے نا، جب غم آتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسروں کو بتاؤں، لیکن جو اللہ کو بتا لے پھر اس کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں. کسی کو بتائیں گے کیا ملے گا؟ آپ غم میں ہیں، ماں کو بتائیں گے اس کا دل جلے گا، بہن کو بتائیں گے اس کا دل پریشان ہوگا، روئے گی، بھائی کو بتائیں گے ہو سکتا ہے غیرت میں آ جائے، جس نے آپ کو غم دیا اس کو برا بھلا کہنے لگے. کر کوئی کچھ نہیں سکتا. کون کرے گا؟ کس کو بتانا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ساری اتھارٹی ہے. اس رب سے جتنی مرضی شکایتیں لگایا کریں، لوگوں کی برائیاں کریں، اپنے حالات کی کریں، لیکن کسی دوسرے کے سامنے پھر نہیں کرنا. پھر ایک اور چیز جو ہم نے اس رکوع سے سیکھی وہ کیا ہے، لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، بلکہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے. یوسف علیہ السلام کا یہ کردار، بھائیوں کو معاف کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا ہاں تم نے تب کیا تھا جب تم نادان تھے، شرمندہ نہیں کیا، تانے نہیں دیے، ہاں جی دیکھ لیا نا. ہم ہوں، میں سوچتی ہوں ذرا اگر ہمارے ساتھ یہ کہانی ہو تو ہم کیا جینا دھوبر نہ کر دیتے. کیا سوچا تھا تم نے میرے بارے میں، کہاں پھینکا تھا تم نے، آج دیکھو میری شان دیکھی ہے تم نے، جا کے دیکھو ذرا میرا محل اور دیکھو میری چیزیں. ہم چھوٹا برتن ہوتا ہے نا، وہ جلدی چھلکنے لگتا ہے. کچھ نہیں کہا، ہاں کہا یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، ہاں ہاں تب اس وقت تم نادان تھے، فوراً ان کو کور کر رہے ہیں. اخلاق کی اعلیٰ بلندیاں یہ، اور ایسے ہی لوگوں کے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں. کہا تمہیں معاف کر دوں. یہی جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن بھی بولے تھے کہ جب مکہ کے کفار اور سردار تھے جو ایک وقت تھا کہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، آج کانپ رہے تھے کہ نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج کیا ہوگا. آپ نے ان سے بولا کہ تم بتاؤ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا. کہنے لگے ہمیں آپ سے رحم کی امید ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا. کیونکہ مکہ والے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہی تھے نا، سب کزنس تھے، کچھ اچھا کے بیٹے، کوئی خاندان کے لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جو آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے. ایک دفعہ دل بڑا کر کے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں، آپ بڑے ہو جائیں گے. وہ جیسے بچوں کو آپ کہتے ہیں نا، دودھ پیو گے تو تم بڑے ہو جاؤ گے. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو معاف کریں، بڑے ہو جائیں گے. اتنے بڑے آپ ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر خود ہی پتہ چلے گا کہ میں نے کیا پایا. اتنی ٹھنڈک آئے گی. اور جب انسان کو معاف کر کے جو خوشی ملتی ہے نا، جب وہ ملتی ہے تو پھر پتہ کیا دل کرتا ہے، یقین کریں پھر دل چاہتا ہے کوئی ہم پہ زیادتی کرے اور میں اس کو معاف کروں، کیونکہ معافی میں مزہ بہت ہے. پھر انسان اس بات پہ کڑتا نہیں اس نے میرے ساتھ کیوں کیا، اور کہتا اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتی ہوں. اور اس کے اندر جو پھر ٹھنڈک ہے وہ چیز کسی اور میں نہیں ہے. اللہ اکبر. چلیے آگے چلتے ہیں، رکوع نمبر 5. ولما فصلت العیر، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو. وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں. جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی دیکھنے والے ہو گئے. کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. उन्होंने कहा, अब्बा जी, आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। कहा, अच्छा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा। वो बड़ा बख्शने वाला और नहायत मेहरबानी करने वाला है। जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंच गया तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा कि अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमनो अमान में के साथ मिस्र में आओ। और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब इसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा कि अब्बा जी, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरे रब ने इसको सच्चा कर दिखाया। वक़द अहसन बी इस अखरजनी मिनस सिजनी, इसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया कि इसने मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से ले आया। इस इख्तलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहे इसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे मुल्क अता फरमाया और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर सिखाई। ए आसमानों जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखरत में मेरा वली और कारसास है। तो मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। ये गैब की खबरों में है जिसकी हमने आपकी तरफ वही की। आप इसके पास न थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वो फरेब करने लगे थे। वमा अक्सरुन्नासी वलो हरस्त बिमुमिनीन, अगरचे आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमानदार न होंगे। आप इस उनसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं कर रहे, ये तो तमाम दुनिया के लिए निरी नसीहत है। ये तरकु नंबर 5, इसका उन्वान क्या है, यूसुफ आला किरदार। इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चंद दुआओं का जिक्र भी है। हुआ क्या कि जब भाई भी वहां आ गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब राज खुल गया, तो इन्होंने कहा कि अब अपने बाप को लेके आओ। कहने लगे वो आ नहीं सकता, वो नाबीना है। रो रो के गम से आंखें चली गई थी। इससे ये पता चलता है कि नबी होने के बावजूद भी गम हुआ था। औलाद का गम वैसे ही आंखों को रुलाता है। कहने लगे अच्छा, अपनी कमीज दी, कहा जाके इसको वहां उनकी आंखों पे लगाना। ये एक मौजजा था, जैसे हर नबी को मुख्तलिफ मौजजात दिए गए, तो इस कमीज को उनके साथ लगाना तो वो ठीक हो जाएंगे। अब बेटे वहां से जब वो कमीज लेके निकले तीसरी दफा के बाद दोबारा, तो बाप को दूर से यूसुफ की खुशबू आने लगी। ये भी एक मौजज़ा था, अल्लाह ताला दिखाता है। और जब आके वो कमीज यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे लगाई, तो अल्लाह ताला ने उनको बसीरत दे दी, वो देखने लग गए और वो फिर सब वापस आए। इस दफा बाप भी गया और माँ भी। माँ कौन सी थी, सौतेली माँ थी, क्योंकि यूसुफ की और बिनजमीन की अपनी माँ जो थी उनका इंतकाल हो चुका था, लेकिन सौतेली माँ भी आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के रिवाज के मुताबिक इन सब को यानी वहां तख्त पे जगह दी। और ये यूसुफ को देख के, जैसे उस दौर में होता था कि बादशाहों को आता देख के लोग सजदे में जाते थे, उस वक्त ये जायज था, आज जायज नहीं है। इसको सजदे ताजीमी कहते हैं, ताजीम इज्जत का सजदा, इबादत का सजदा नहीं था। तो जब ये मंजर देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर अपना ख्वाब याद आ गया जो बचपन में देख चुके थे कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। तो वो 11 सितारे भाई थे और सूरज जो है वो बाप था और चांद जो है वो माँ थी। तो इस मंजर को देख के वो ख्वाब याद किया और फिर सारे ही वक्त में अल्लाह ताला की तारीफें कर रहे हैं। और इस तरह फिर कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे बनी इसराइल का जो खानदान था, तकरीबन 40 से 60-70 के करीब लोग थे, वो सब फिर मिस्र में आबाद हो गए। और इस तरह से फिर बनी इसराइल जो थी वो यानी मुल्क शाम से निकल के मिस्र में आबाद हो गई थी, जो यहूद का पूछा हुआ सवाल था। तो इस वाक्य में हमारे लिए बहुत सारी बातें लिखिए। पहली बात तो ये है कुर्ते की हकीकत खोलना चाहूंगी आपके ऊपर कि बास लोग ये सोच सकते हैं कि ये कुर्ते का कमाल था कि याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई आ गई. नहीं, अब गौर करें कि याकूब की बिनाई जो गई थी वो भी तो एक कुर्ते की वजह से थी ना. वो भी तो एक कुर्ता ही था जिसको खून लगा के ले गए थे बचपन में यूसुफ का, और उसी को देख के उनको गम आया और जो भी हुआ. अब उसी कुर्ते को अगर उसी से मिलते जुलते को देख के आंखें खुल गईं, तो असल कुव्वत फिर कपड़ों में नहीं, अल्लाह की तरफ से. एक चीज को बरकत वाला कर दे, एक चीज को बरकत वाला ना करे, ये अल्लाह की तरफ से होता है. इसीलिए जब हम लिबास पहनते हैं तो दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला इस लिबास को मेरे लिए बरकत वाला कर दे. दूसरी चीज हमने इसमें जो देखी वो क्या है, सहरी के वक्त दुआ मांगने की अहमियत. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ना सिर्फ ये के माफ़ किया बल्कि फरमाया सौफ अस्तग़फिरुलकुम रब्बी, आयत नंबर 98 में, कि अन करीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा. और मुफस्सरीन कहते हैं कि सौफ़ से मुराद क्या है कि सहरी के वक्त में. और हकीकत यह है कि माँ बाप जो अपनी औलाद की तरफ से परेशान है, किसी भी गम में है, उनके लिए ये वक्त बेहतरीन वक्त है अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगने का. पूरा एक वक्त भी ऐसा होता है कि जिसमें अल्लाह ताला बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं और इंसान भी बिल्कुल दूसरे तमाम गमों और चीज़ों से आज़ाद हो चुका होता है. इसकी अहमियत पता चली. फिर दूसरी चीज़ इससे पता चली जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अमल से, और वो क्या थी कि सौतेली माँ का भी इकराम किया. आज हमारे यहाँ अफसोस की बात क्या है कि ऐसे रिश्तों को न जाने क्यों बोगस और कीने के रिश्ते बनाए जाता है. किसी की माँ सौतेली हो या बच्चे सौतेले हो तो लोग उसको लेके पता नहीं किस किस तरह से सोचते हैं. नहीं, अपने माँ बाप की जिस तरह खिदमत करना और उनकी बात मानने का अजर है, इसी तरह फिर सौतेले माँ बाप का भी अजर है. फिर एक और चीज़ जो हमने इसमें सीखी वो क्या है कि ख्वाब की ताबीर हुई लेकिन कितने साल में, 40 साल बाद ख्वाब पूरा हुआ. हमारा हाल क्या है, रात को ख्वाब देखते हैं तो सोचते हैं कि सुबह ये पूरा हो जाएगा. मुफस्सरीन कहते हैं कि ख्वाब देखने के बाद 40 साल तक भी वो पूरा हो सकता है. तो लिहाजा अगर आज किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो हो सकता है 40 साल बाद उसकी ताबीर हो. लेकिन बहरहाल यानी ये ख्वाब की एक सच्चाई की बात भी हमारे सामने आई इसमें. फिर इसी तरह इसमें एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाते से बहुत ही खूबसूरत किरदार समझ में आता है कि अच्छी बात को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं और बुरी चीज़ को अपनी तरफ. जेल में जाने का जिक्र नहीं किया, जेल से निकलने का जिक्र किया, शिकवा नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं कि रब ने मुझे उस जेल से निकलवा दिया. फिर एक और देखिए खूबसूरत किरदार के भाइयों के और अपने बीच में झगड़े को शैतान का झगड़ा कहते हैं, यानी ये शैतान था जिसने हमारे अंदर बुराई फैलाई, वरना भाई तो ऐसे नहीं है. फिर इसी तरह इसमें हमने एक और चीज सीखी, अच्छे इंजाम की दुआ. यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब कुछ मिल चुका है, दुनिया की हर चीज, बादशाह भी हैं, माँ बाप भी मिल गए, खानदान मिल गया, लेकिन अब मांग क्या रहे हैं कि अल्लाह तवफ्फनी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, नेक लोगों का साथ जो है वो जिंदगी में भी फायदा देता है और मरने के बाद भी वो इंसान को फायदा देता है. अगर बुनियादी तौर पे यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरा हुआ, कुछ किस्से से जो सबक थे जो हमने बीच बीच में कुछ जिक्र भी किया, उसको अगर एक दफ़ा थोड़ा सा आपके सामने रख दूँ तो फ़ायदा होगा. बहुत ही बड़ी जो चीज़ हमने सीखी इसमें वो क्या थी कि शर में से खैर और खैर में से शर निकलता है. कुरान पाक में दो जगह आता है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्या व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य. कभी ज़िंदगी में कोई बुरे हालात आ जाएं तो गम ना किया करें, अल्लाह ताला उसमें से खैर ज़रूर निकालेगा, मुंतज़िर रहा करें. जब बंदा सच्चा होता है ना और ईमान साथ होता है तो वो गम के पर्दे में खैर ढूंढ रहा होता है कि अल्लाह अब इसके पीछे क्या खैर है, वो पिछले गम के बाद तो ये खैर निकली थी, अब इसके बाद क्या है. तो इंशाल्लाह इससे कभी भी ज़िंदगी में मायूसी नहीं होगी. दूसरी चीज़ जो हमने इस किस्से से सीखी वो क्या है कि बदला लेने के बावजूद माफ़ करने का बहुत अजर है. तीसरी चीज़, जहाँ भी हों जिस हाल में भी हों अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला. फिर अगली बात क्या है कि बुरी सोहबत इंसान को मुतासिर करती है, लिहाजा नेक लोगों का साथ मांगना है. अगली बात यह है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं लेकिन नेक बंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं, और एक बहुत थीम है जो इस सूरत का, वो क्या है, हसद और बुगस। इनका अंजाम अच्छा नहीं होता। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पे अगर चंद लफ्ज बोले तो हया, बाहया थे तभी तो अजीज मिस्र की बीवी के जाल से निकल गए, सहावत सखी थे तभी तो भाइयों को इतना माल लुटाया, अमानत मुल्क के खजानों के मालिक बने तो सही तरह से इस अमानत को अदा किया, सब्र इसकी तो बात ही ना करें कितना सब्र था उनका, शुक्र एहसान और तकवा, ये हैं वो सिफात जो किसी इंसान को भी कामयाब करती हैं। और कामयाब वही होगा जो वाकई अपने आप को कामयाब करवाना चाहता है। थोड़ी सी एक बात आपके सामने रखूंगी अगर आप वक्त इजाजत देगा, क्या कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और नबी सल्लम की जिंदगी में भी मुमासलत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में भी मिलती हैं और इधर भी, उसमें कुछ चीजें आपके साथ अब रख देती हूँ, कुछ इंशाल्लाह जब आप दोबारा इस सूरत को तफसील से पढ़ेंगे रमजान के बाद तो फिर करेंगे। पहली बात यह कि ख्वाब, नबी सल्लम की नबूवत का आगाज जो था वो सच्चे ख्वाबों से हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी ख्वाब का जिक्र है। फिर इसी तरह दूसरी बात कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुन के याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम्हारी मुखालफत करेंगे, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वही थी या आपको जो सच्चे ख्वाब आते थे तो उसको सुन के वरका बिन नौफल एक शख्स था जो हजरत खतीजा के कज़न थे, उन्होंने भी ये कहा था कि देखिएगा आपकी कौम जो है आपको झुटलाएगी, बिल्कुल वही सिमिलरिटीज़ हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि आखिरी नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आखिरी नबी हैं, इसी तरह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है ये हजरत इसहाक की नस्ल के आखिरी नबी थे, यानी इनके सब बेटों में आखिरी नबी थे। फिर एक और चीज़ जो मिलती है वो अंदाज़े तबलीग है, दोनों का तबलीग का अंदाज नहायत मौसर और पुर हिकमत है और तौहीद के पैगाम पे मबनी है। फिर वालदा का देखिए, यूसुफ की माँ भी बचपन में इंतकाल कर गई और नबी सल्लम की भी। फिर इसी तरह कहत, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी कहत का एक सिलसिला है और नबी सल्लम ने भी जब मक्का को छोड़ा था तो एक बहुत बड़ा कहत था। और इसी तरह आखिरी चीज़ क्या है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको मिले और बावजूद बदला लेने की ताकत के आपने उनको माफ़ किया, तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको माफ़ किया। अब हमें अपनी ज़िंदगी में देखना है कि हमने इस किस्से से क्या सीखा। चलिए आखिरी रुकू है सूरह यूसुफ का, रुकू नंबर 6। وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون। आसमानों और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये लोग मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। सच है ना, कितनी निशानियां दिखती हैं अपने रब की कुदरत की, लेकिन हम कैसे गुजरते हैं जैसे कभी सोचा ही नहीं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इनमें अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक हैं। बहुत बड़ी हकीकत है, इसको हाईलाइट कर लें कि ईमान वाला भी मुशरिक हो सकता है, और रियायत हमेशा हवाले में दी जाती है ऐसे मौकों पे। अफ अमीनो अंतातियहुम गाशियतुम मिन अजाबिल्ला। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि इनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई अजाब आ जाए, या इन पर अचानक क्यामत टूट पड़े और वो बेखबर ही हों। आप कह दीजिए मेरी राह यही है, मैं और मेरे मुत्तबेईन अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं। वमा अरसलना मिन कब्लिक इल्ला रिजाला। आपसे पहले हमने बस्ती वालों में जितने रसूल भेजे थे सब मर्द ही थे, इनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाया करते थे। क्या जमीन में चल फिर कर उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले के लोगों का कैसा अंजाम हुआ। यकीनन आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत बेहतर है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते। यहाँ तक कि जब रसूल ना उम्मीद होने लगे और वो कौम के लोग ख्याल करने लगे कि इन्हें झूठ कहा गया, फौरन ही हमारी मदद इनके पास पहुंची, जिसे हमने चाहा इसे निजात दी। बात ये है कि हमारा अजाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया जाता। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں. کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. رکوع نمبر 6 تھا, اس کا عنوان کیا ہے؟ رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت. اس میں ہم نے دو طرح سے دیکھا. ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی اور دعوت دی. کس چیز کی؟ نمبر 1, زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اور پھر لوگوں کو عذابوں سے ڈرایا, کیا تم بے امن ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ تمہیں, یعنی تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ اللہ تم پہ عذاب نہیں دے گا. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ نشانیوں پہ غور کرنا ہے. باہر جاتے ہیں نا پکنک پہ, گھومنے کے لیے, زندگی میں کبھی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں باہر نہیں نکلا. تھوڑا شعور ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم باہر سفر میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے کان کچھ اور ہی سن رہے ہوتے ہیں, کچھ اور ہی دنیا کی باتیں, شیطان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں. اور وہ قیمتی وقت جو ہوتا ہے, جو سفر کے دوران انسان رب کے بارے میں سوچ سکتا ہے, فطرت کے قریب ہوتا ہے, وہ اس کا چھن جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ ٹریولنگ میں ہوتے ہیں نا, گاڑی چلتی ہے نا, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسی طرح ذہن کے اندر ایک ریل چلتی ہے. یعنی میرے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جو میں نے کوئی سوچنی ہے چیز, کچھ پلان کرنا ہے, کوئی ایسا کام سوچ رہی تھی, اب اس میں ایک ربط پیدا کرنا ہے. گاڑی میں ایسے لگتا ہے کہ پہیے کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی گھوم رہا ہے, اور اگر آپ کے ہاتھ میں کاپی پین ہو تو آپ اس وقت لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن اگر ایسے, اور پھر مجھے محسوس کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی جگہ میں میں قید کر گئی, میں اپنے آپ کو بہت سیکیور فیل کرتی ہوں. گھر میں آپ کچھ سوچنے لگتے ہیں نا تو ایک دم اچھا ادھر کچھ کر لوں, آپ کچھ لینے گئے اندر تو اس کمرے میں کوئی کام دیکھ گیا, کچن میں کچھ پانی لینے آئے تو وہاں کچھ کام مل گیا, آپ کی سوچ بکھری ہوتی ہے. گاڑی میں مجھے لگتا ہے میں یہاں سے نکل نہیں سکتی, میں یہاں سے جا نہیں سکتی, سوچ محدود ہوتی ہے. اور پھر سامنے آسمان, باہر قدرتی مناظر بھی دکھتے ہیں, اور وہ وقت جو ہوتا ہے انسان کا بہت قیمتی ہوتا ہے. آپ آزما کے دیکھیں, اگر آپ اس وقت تلاوت سنیں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آئے گا. کوئی لیکچر اگر آپ گاڑی میں سنتے ہیں سب سے زیادہ آپ فوکس اس وقت کرتے ہیں. تو یہ وقت جو ہوتے ہیں یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسے وقتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے. دوسری چیز یہی بات کہ ہم نے شرک نہیں کرنا ایمان والا ہونے کے باوجود. تیسری چیز یہ سیکھی کہ اللہ کے عذابوں سے بے خوف نہیں ہونا, ہر وقت اس خوف میں رہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور اس کے اوپر انسان کی پکڑ نہ ہو جائے. اس کے بعد آخر رکوع, آخر سورت تک اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتا دی. کون کون سی؟ نمبر 1, رسول انسان تھے, بستیوں کے رہنے والوں میں سے آئے, رسولوں کی طرح وحی آئی, قوموں کو دعوت دی کہ پچھلی قوموں کے حال سے عبرت سیکھے, آخرت کا گھر متقین کے لیے ہے, پیغمبروں نے نصیحت کی لیکن لوگوں نے کان نہ دھرا, پھر جب پیغمبر رسول لوگوں کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا, اور پھر اللہ کی مدد پیغمبروں تک پہنچی اور قوموں پہ عذاب آ گئے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک نصیحت کی ہے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب سچی ہے, گھڑی ہوئی نہیں, اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ہم نے اس سارے باتوں میں سے اپنے لیے کیا سیکھا؟ نمبر 1, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, گروہوں کی طرف نہیں بلانا, جماعتوں کی طرف نہیں بلانا, انسانوں کی طرف نہیں بلانا. اگلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا؟ یہ ایمان رکھنا ہے کہ تمام نبی یا تمام رسول جو تھے وہ انسانوں میں سے تھے, انسان تھے. پھر اس چیز کا یقین رکھنا ہے کہ انجام متقیوں کا ہی بہتر ہوگا, اور پھر حق والوں کی مدد ضرور ہوتی ہے, اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر سے ہدایت اور رحمت لینے کی کوشش کرنی ہے. ہدایت کیسے آتی ہے؟ سمجھ کے پڑھیں گے. رحمت کیسے آتی ہے؟ جب اس کی عربی کو پڑھیں گے. تو الحمدللہ یہ تھی سورت یوسف. مجھے تو لگتا ہے حق ادا نہیں ہوا, لیکن اس وقت کے ناطے سے ہم جتنی بھی بات کر سکے, لیکن یقین کریں کہ اس سورت میں بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کو گاہے بگاہے پڑھتے رہنا چاہیے, اور اس سے پھر انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا.